ओशो अमृत वाणी प्रवचन माला मरो हे जोगी मरो प्रवचन संख्या 37।
प्यारे मित्रों, आप अपने मित्रों को बताएं कि यदि वे भी अपने व्हाट्सएप पर ओशो के प्रवचन चाहते हैं तो इस नंबर पर ओशो लिखकर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें 8295435000।
अवधो मास भखंत दया धर्म का नास मद पिबंत तहां प्राण निरास भांगी भकंत ज्ञान ध्यान खोवंत जम दरवारी ते प्राणी रोवंत जीव क्या हतिये रे प्यंडधारी मारिले पंच भूमुगलाम चरे धारी बुधि बाड़ी जोग का मूल है दया दान कथन तगो रख मुक्ति ले मानवा मारी ले रे मन द्रोही जाके पप वरण मास नहीं लोही पावड़िया पग फिल से अवधो लो है छिजंत काया नागा मुनि दुधाधारी एता जोगन पाया पाव दिया पग फिल से अवधु हृदय का भाव हाथ में जानिए यह कली आई खोटी बदंत गोरख सुनो रे अवधु करवे होई सो निक से टोटी कोई बादी कोई विवादी जोगी को बादन करना 68 तीर्थी समंदी समावे यू जोगी को गुरमुखी जरना अवधु मन चंगा तो कठोती ही गंगा बांध्या मेला तो जगत्र चेला बदंत गोरख सती स्वरूप तत विचारे ते रेखन रूप पावड़िया पग फिल से अवधु यहु मान शक्ति यहु मान शिव यहु मान पांच तत्का जीव यहु मन लीजे उन मान रहे तो तिनी लोक की बाता कहे पावड़िया पग फिर से अवदू डाबी न मारीबा खाली न राखीबा जानीबा अग्निका भेवम बूढ़ी थे गुरबाणी होगी सती सती भाखंतिशी गोरखदेवम रात गई अधराती गई बालक ये कपुकारे है कोई नगर में सुरा बालक का दुख निवारे देवल जात्रा सुनी जात्रा तीर्थ जात्रा पानी अतीत जात्रा सुफल जात्रा बोले अमृत वाणी बोले अमृत वाणी।
का सूरज प्रीति जी की सजली गोद में सोया, किसी से नील में बिछड़ा हुआ पंछी मिला खोया। मगर मैं हूं कि सुनी राह पर चुपचाप चलता हूं, थके पग पर परिश्रम के पहर का अंत कब आया। दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया। लिए प्रतिबिंब कूलों का अंधेरे में नदी सोई, भ्रमर के प्यार की तलपन कमल के अंक में खोई। थकी लहरें हुई खामोश गिरकर के किनारों पर, दुर्गों में किंतु आंसू की लहर का अंत कब आया। दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया। पवन ने पी लिया आंसू कुमुद की स्निग्ध पांखों का, किसी ने भी न पहुंचा नीर मेरी क्षुब्ध आंखों का। तिमिर का बिस गई पीरात चांदी के कटोरे से, मगर मेरी निराशा के जहर का अंत कब आया। दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया। डगर का अंत भी आता है लेकिन जब तक मन है तब तक नहीं आता। मन ही डगर है और सब राहें तो बस नाम मात्र की राहें हैं। असली राह तो मन की राह है। दिन आएंगे और जाएंगे, जन्म होंगे और मृत्युएं होंगी, लेकिन मन अगर शेष रहा तो दिवस का अंत तो आता रहेगा बार बार, लेकिन डगर का अंत ना आएगा। डगर बाहर नहीं है, डगर है भीतर। डगर है वहीं जिस पर विचार चलते, वासनाएं चलती, कल्पनाएं कामनाएं चलती, स्मृतियां चलती, भविष्य के स्वप्न चलते। डगर है वही, पहचान लेना ठीक से। बाहर के रास्तों पर असली डगर नहीं है, बाहर के रास्तों पर भी लोग चल रहे हैं क्योंकि भीतर की डगर ने उन्हें बाहर के रास्तों पर चलाया। चीन की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, एक फकीर को सम्राट ने आमंत्रित किया था अपने महल पर। वे दोनों छत पर खड़े होकर सांझ डूबते सूरज को देखते थे। सामने ही सागर है, उत्ताल उसकी तरंगे, सागर में डूबता हुआ सूरज का अग्नि का गोला है और सैकड़ों जहाज आ रहे जा रहे। सम्राट ने कहा, फकीर को देखते हैं कितने जहाज आते कितने जहाज जाते। वह फकीर बोला कि नहीं, कितने नहीं देखता, बस दो ही देखता हूं, दो ही जहाज। सम्राट ने कहा आप होश में हैं, मुझे गिनती नहीं आती, सैकड़ों जहाज हैं, गिने भी ना जा सके इतने जहाज। लेकिन फकीर फिर भी बोला कि नहीं, दो ही जहाज। एक धन की यात्रा पर निकला है, एक पद की यात्रा पर निकला है, बाकी सब बहाने, बाकी फिर उन्हीं के रूपांतरण है, उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं की आकृतियां। जहाज तो दो है, एक धन की यात्रा, एक पद की यात्रा। लेकिन अगर इन दोनों को भी ठीक से समझो तो ये दोनों जहाज भी एक ही लकड़ी से बने, वह लकड़ी है अहंकार की लकड़ी। और अगर बहुत खोज करो तो ये जहाज बाहर नहीं चलते, ये भीतर तुम्हारे मन के सागर में चलते। मन की डगर है, मन ही डगर है, और जब तक मन चल रहा है तब तक थको, गिरो, फिर उठोगे, फिर चलोगे, मन चलाता ही रहेगा। दिवस का अंत आया पर डगर का अंत कब आया? साधारणता नहीं आता, कभी कभी आता है, किसी बुद्ध को, कबीर को, गोरख को, नानक को, कभी कभी आता है। आज सबका सकता है, पर इतना हम होश ही नहीं संभालते। हमें यह पता ही नहीं है कि हमारी असली यात्रा बाहर नहीं हो रही है, भीतर हो रही है। और जिन यात्रियों से हम बाहर मिल रहे हैं वे असली यात्री नहीं, जिनसे हम मन की डगर पर मिलते हैं वे ही असली यात्री। वहां तुम किस किस से मिलते हो? मिलते हो अतीत की स्मृतियों से, भविष्य की कल्पनाओं से, न मालूम कितनी वासनाओं से, न मालूम कितने विचारों से। भीड़ वहां इकट्ठी है, राह चलती ही रहती है, जागो तो चलती है, सो तो चलती है, राह चलती ही रहती है, जन्मते हो तो चलती है, मरते हो तो चलती रहती, मरते मरते भी मन की राह बंद नहीं होती, देह छूट जाती, मन नई देह पर सवार हो जाता है। एक वाहन टूट गया, मन नए वाहन निर्मित कर लेता है, मगर यात्रा जारी रहती है। इस यात्रा का नाम ही संसार है। संसार से तुम अर्थ मत समझना, वह जो बाहर फैला हुआ है, वैसा अर्थ समझा तो भूल हो जाएगी, फिर तो संसार को छोड़ ना सकोगे कभी। जहां भी जाओगे वहीं बाहर कुछ होगा, पहाड़ पर भी होगा, वन कंदराओं में भी होगा। संसार से अर्थ है वह जो भीतर चलता है, उसे तोड़ा जा सकता, उसे रोका जा सकता, और मन गिर जाए तो संसार गिर जाता है, और मन गिर जाए तो फिर और जन्म नहीं, मन गिर जाए तो फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर अमृत से मिलन है। सूत्र अवधू मास भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवंत तहां प्राण निराश, भांगी भखंत ज्ञानम ध्यानम खोवंत, जम दरबारी ते प्राणी रोवंत। एक दिन मृत्यु के द्वार पर रोओगे, बुरी तरह रोओगे, जार जार रोओगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसके पहले कि मृत्यु के द्वार पर रोना पड़े, संभल जाओ। संभलने के सूत्र यह रहे। पहला सूत्र करुणा। जीवन में इतना उपद्रव क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है, इतना वैमनस्य क्यों है, इतना विद्वेष क्यों है? करुणा खो गई। और ऐसा नहीं है कि करुणा दूसरे के हित में, करुणा तुम्हारा हित है, स्वाहित है। एक बुनियादी सूत्र समझ लेना, जो तुम दूसरे के साथ करते हो वही तुम पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे। अगर चाहते हो कि अमृत को काटो तो मौत को मत बो। अगर चाहते हो शाश्वत जीवन मिले तो फिर जीवन का विनाश न करो। अगर चाहते हो कि प्रेम तुम पर बरसे तो घृणा के कांटे दूसरों के रास्तों पर मत डालो। जो गड्ढे तुमने दूसरों के लिए खोदे वो अपने लिए ही खोदे। सब तुम्ही पर वापस लौट आता है। यह जगत तो ऐसा है जैसे कोई पहाड़ों में जाकर घाटियों में जोर से आवाज जगाए और सारी घाटियों से आवाज लौटकर उसी पर बरस जाए। यह जगत एक प्रतिध्वनि है। करुणा का अर्थ होता है दो प्रेम ताकि पा सको प्रेम, और प्रेम पाने की सभी की आकांक्षा है। ऐसा कौन है जो प्रेम नहीं पाना चाहता है? पाना तो सभी प्रेम चाहते हैं लेकिन कीमत कोई भी चुकाना नहीं चाहता। इसलिए छीना झपटी बहुत, मिलता कुछ भी नहीं। प्रेम दो और प्रेम मिलता है, और हजार गुना होकर मिलता है। अवधु मांस भकंत दया धर्म का नाश, यह तो असंभव है थोड़े से समझदार बोधपूर्वक व्यक्ति को जो जीवन को समझने की चेष्टा में संलग्न है, कि अपने स्वाद के लिए लोगों की पशुओं की हत्या कर सके। आदमियों को खाने वाले कबीले हुए, अभी भी कुछ लोग हैं अमेजान के कछार में जो आदमियों को खा जाते, उनकी संख्या खुद ही कम होती जाती क्योंकि कबीला अपने को ही खाता जाता है। मनुष्य को खाने वाले लोग जमीन पर थे, वे हमारे ही पूर्वज थे। फिर किसी तरह समझाया बुझाया पशुओं को खाने लगे, और समझाया बुझाया, बामुश्किल आदमी को आदमी बनाने की चेष्टा की जा सकी है। फिर भी आदमी अभी पूरा आदमी नहीं बन पाया। हिंसा जब भी तुम कर रहे हो, फिर किसी भी कारण से कर रहे हो, तुम इस हिंसा के माध्यम से कभी भी आनंद को उपलब्ध न कर सकोगे। दुख दोगे दुख पाओगे, वैर बोओगे वैर काटोगे। महावीर ने कहा है वैरम मच्छ न किणई। जिसने शत्रुता बांधी उसने शत्रुता के अतिरिक्त और कभी कुछ न पाया। तो महावीर कहते हैं मैं किसी से वैर नहीं करता। बुद्ध ने कहा है शत्रुता से शत्रुता नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा से हिंसा और बढ़ती। जीवन जहां तक बन सके हिंसा से विमुक्त करो, और किन छोटी छोटी बातों पर हिंसा में लगे हो। स्वाद है, स्वाद जैसी छोटी बात के लिए जीवन के परम धन को खो रहे हो। स्वाद क्षणभंगुर है, परिणाम बहुत लंबे होंगे, जन्मों जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ सकता है। कष्ट दिया है तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा मत सोचना कि ये बात सिर्फ मांसाहार के लिए की जा रही। किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह का दुख, और ऐसा ही नहीं कि दूसरों को मत देना, अपने को भी मत देना, दुख देना ही मत, क्योंकि तुम किसी को भी दुख दो तुमने परमात्मा को ही दुख दिया। तुम एक वृक्ष को दुख दो तो भी तुमने उसी को दुख दिया, क्योंकि वही था हरा वृक्ष में। और तुमने एक पक्षी मार डाला, तुमने उसी को मारा, क्योंकि वही उड़ता था पक्षी में। और तुमने अपने को दुख दिया तो भी तुमने उसी को दुख दिया, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर भी विराजमान था। उस एक का ही विस्तार है, उस एक के ही सागर के हम सब अनंत तरंगे। वह जो तरंग दूसरी मालूम पड़ रही है वह भी दूसरी नहीं है, जुड़ी है हमसे। हम सब संयुक्त हैं, हम सब एक अस्तित्व है। इस घोषणा का नाम अहिंसा है। अवधु मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवन तहा प्राण निराश। और ऐसे भी लोग हैं जो जीवन के इस अमूल्य अवसर को बेहोशी में गंवा रहे हैं, और साधारण बेहोशी भी उनको काफी नहीं मालूम पड़ती, उन्हें शराब चाहिए। ऐसे ही बेहोश, लेकिन इस बेहोशी को और घना करने की कोशिश में लगे। होश जगाओ, कौन तुम्हारे भीतर बैठा है, होश में ही उससे पहचान होगी। ध्यान की तरफ चलो, थोड़ी जागृति की बेला आए, प्रभात हो, जागे तुम्हारे भीतर का सूरज, तुम रोशनी से भरो। उल्टे तुम बेहोशी की तरफ जा रहे हो, लेकिन लोगों ने तरह तरह की शराबें खोज ली। शराब से इतना हिम्मत समझना कि जो शराब खाने में बिकती, और भी सूक्ष्म शराबें हैं। वह तो सबसे सस्ती शराब है जो शराब खाने में बिकती, और महंगी शराबें धन का मद है, पद का मद है। देखते हो एक आदमी पद पर पहुंच जाता है तो उसकी चाल ही बदल जाती, उसकी अकड़ ही बदल जाती, उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। शराबी तो लड़खड़ाता है, मगर तुमने पद के मद से भरे लोगों को देखा, कोई शराबी इतना नहीं लड़खड़ाता। पद में पहुंचते ही सारी बात बदल जाती, दही सारी बात बदल जाती। ये सब नशे, ज्ञान का भी नशा है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो सिर भारी हो उठता है, फूल जाता है। त्याग का भी नशा है, थोड़ा सा त्याग हो जाए तो उसकी भी अकड़ आ जाती है। नशे का सार समझ लो, नशे का सार है जहां भी अहंकार अकड़ जाए वही नशा, और जहां भी तुम होश खो के काम करने लगो वही नशा। जहां तुम्हारे जीवन में मूर्छा और तंद्रा सघन होने लगे वही नशा। एक तो ऐसे लोग हैं जो जागे भी जागे नहीं, और इसी पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हुए जो सोए थे तो भी जागे थे। ये दो छोर चुन लो, जो तुम्हें चुनना हो। जो नींद को चुनेगा वो मौत के दरवाजे पे बहुत बुरी तरह तड़फेगा और रोएगा, लेकिन तब कुछ किया नहीं जा सकता, अवसर बीत गया। रविन्द्रनाथ की एक कथा है। एक भिक्षुक सुबह सुबह घर से निकला, और जैसे भिखारी अपनी झोली में थोड़े से दाने डाल लेते हैं घर से निकलते समय, उसने भी चावल के थोड़े दाने डाल लिए थे, क्योंकि झोली खाली हो तो कोई देता नहीं, झोली भरी हो तो लोगों को थोड़ा लाज संकोच आता। तुम्हारे द्वार पर भिक्षुक दस्तक देता है और तुम देखते हो उसके पात्र में, उसकी झोली में कुछ है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि पड़ोसी ने दिया है, अब मैं न दूं, तो जरा अहंकार को चोट लगती। तुम दया के कारण तो भिक्षु को देते नहीं, अहंकार के कारण देते हो। तो सभी भिखारी अपने पात्र में थोड़े से दाने, थोड़े पैसे घर से डाल के चलते, पैसा पैसे को खींचता, दाना दाने को खींचता। उस भिखारिनी ने अपने झोले में डाल लिए हैं कुछ चावल के दाने और चला, लेकिन चौंक गया, राह पर आया नहीं था कि राजा का रथ आके रुका। उसके आनंद का तो पारावार न रहा। बहुत बार राज द्वार तक गया था, लेकिन पहरेदार भीतर ही न जाने देते थे। राजा के सामने झोली फैलाने का अवसर ही न मिला था, आज मिल गया अवसर। उसके आनंद का तो पारावार नहीं, वो तो भूल ही गया, ठगा ही खड़ा रह गया। तभी उतरा राजा, और राजा ने अपनी झोली उस भिखारी के सामने कर दी, और भिखारी तो बहुत घबरा गया। देने की तो उसे आदत ही न थी, दिया तो उसने कभी था ही नहीं, मांगा ही मांगा था। और सम्राट ने कहा कि सुन भाई, माना कि तू भिखारी है और तुझसे मैं मांगू ये योग्य भी नहीं, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा है कि राज्य पे बड़ा संकट है, संकट टल सकता है। अगर मैं आज निकलूं सुबह सुबह सूरज के उगने के समय, जो भी व्यक्ति पहली बार रास्ते पे मुझे मिल जाए उसी से भीख मांग लूं, तो राज्य का संकट टल सकता है। मत ना मत कर देना, चार दाने भी देगा तो चलेगा, नाम मात्र को कुछ भी दे दे। ये भी कैसी अड़चन हो गई कि मैं एक भिकमंगे के सामने पड़ गया हूं। अब भिकमंगा खड़ा है हाथप्रभ, सोचा था कि राजा से मांग लूंगा, सोने से भर जाएगी झोली, ये तो उल्टा हो गया। और पास के दाने भी चले, मुट्ठी भरता है और नहीं निकाल पाता झोली से। आदतें पुरानी, लिया ही है, दिया तो कभी नहीं। बामुश्किल बड़ी हिम्मत करके एक दाना, सिर्फ एक दाना चावल का राजा की झोली में डाल दिया, पर औपचारिकता पूरी हो गई। राजा तो बैठा रथ पर, स्वर्ण रथ जा भी चुका, धूल उड़ती राह पर रह गई, और भिखारी के मन में पश्चाताप रह गया। कुछ मिलता वह तो मिला नहीं, पास था कुछ वो भी गया, गांठ का भी कुछ गया। उस दिन उसे बहुत दान मिला, इतना कभी ना मिला था। देने वाले को मिलता है, ये जगत चारों तरफ से बांटता है। अगर हम देने को तैयार, ज्यादा दिया नहीं था उसने, मगर जितना दिया था वो भी भिखारी के मन से बहुत था। साम्राज्य ही दे दिया था भिखारी ने, बहुत मिला, झोली भर गई, मगर चित्त में पश्चाताप था उस एक दाने का जो कम था। कहीं राजा न मिला होता तो एक दाना और ज्यादा होता। हम ऐसे ही हैं, जो मिल जाता है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं मिलता उसके लिए शिकायत जरूर करते रहते। तुम्हें कितना मिला है? तुमने कभी मंदिर में जाके परमात्मा को धन्यवाद दिया है? नहीं। लेकिन जो नहीं मिला है उसकी शिकायत तो हर घड़ी तुम्हारी श्वास श्वास में भरी है, कहो या न कहो, तुम्हारे प्राण शिकायतों से भरे। वह आदमी भी थका मांदा लौटा, आके झोली पटक दी। पत्नी ने कहा, उदास दिखते हो, इतनी झोली तो कभी भी न भरी थी। उसने कहा कि क्या खाक भरी, आज जैसा दुर्दिन कभी नहीं आया, सुबह ही सुबह बोहनी ही बिगड़ गई, कभी मैंने दिया न था, आज देना पड़ा, खुद सम्राट मांगने खड़ा था, आज इस झोली में एक दाना कम है, आज चित्त मेरा पश्चाताप से भरा है। पत्नी ने झोली उंडेली, दोनों चौंक कर खड़े रह गए। चावल के दाने गिरे ढेर, उसमें एक दाना सोने का था। एक ही दाना उसने दिया था, वही सोने का हो गया था। यह कथा प्यारी है, जो हम देते हैं वही सोने का हो जाता है, जो हम बचा लेते हैं वही मिट्टी हो जाता है। जीवन में जितना जो देता है उतना ही उसका जीवन स्वर्णिम हो जाता है। मगर अब तो बहुत देर हो गई थी, अब तो बहुत पछताने लगा, छाती पीट पीट के भिखारी पछताने लगा कि काश मैंने पूरी मुट्ठी भर के दे दी होती तो सब दाने सोने के हो गए होते, मैं भी कैसा अभागा हूं। लेकिन अब तो अवसर बीत चुका था। यह जो कथा रविन्द्रनाथ ने एक कविता में लिखी है उसका शीर्षक है अवसर बीत गया। जीवन के बीतने पर बहुतों के जीवन का शीर्षक यही होता है, अवसर बीत गया। मत ऐसा करना, तुम्हारी झोली सोने से भर सकती है मगर दोगे तो भरेगी, बांटोगे तो भरेगी, जोड़ोगे तो मिट्टी ही हाथ रह जाएगी। और जो भी अहंकार से भरे वो जोड़ते, धन जोड़ते, पद जोड़ते, प्रतिष्ठा जोड़ते, ज्ञान त्याग जो भी मिल जाए हर चीज को संपदा बना लेते, हर चीज के ऊपर अकड़ के फन मार के बैठ जाते। और फिर बहुत तरह के मद हैं, धन का मद है, पद का मद है, ज्ञान मद है, त्याग मद भी है। देखते हो त्यागी को अकड़ा हुआ, जहां अकड़ है वहां नशा है, जहां नशा है वहां आत्मज्ञान संभव नहीं। इसलिए कहा है कि अहंकार हो तो आत्मज्ञान संभव नहीं, क्योंकि अहंकार ही असली मदिरा है। अंगूरों से नहीं निकलती असली शराब, असली शराब तो अहंकार से निचुड़ती है। और घर घर में लोगों ने भट्टियां खोल रखी अहंकार से शराब निचोड़ने की भट्टियां। अवधु मांस भखंत दया धर्म का नाश, मद पीवंत तहां प्राण निराश। और जो जो भी मद से भरेंगे उनके प्राण सिवाय निराशा के और कुछ भी न जानेंगे। उनके प्राणों में कभी सुबह न होगी, सदा रात ही रहेगी। वे निद्रा जानेंगे, तंद्रा जानेंगे, जागरण का उन्हें कभी कोई अनुभव ना होगा, सूरज से उनका मिलन ना होगा, उनके जीवन में कभी प्रभात ना होगा, कभी प्रभाती के स्वर न गूंजेंगे। भांगी भकंत ज्ञान ध्यान खोवंत। और लोग हैं कि खोज में लगे, ऐसी खोज में लगे हैं कि किसी तरह सस्ता ध्यान हो जाए। सोम रस वेदों से लेके अब तक आदमी ने बड़े सस्ते ध्यानों की खोजें की, सोम रस से लेकर एलएसडी तक आदमी की तलाश ये रही कि कोई रासायनिक तत्व मिल जाए जिससे ध्यान लग जाए, कि गांजे की दम मार ले, कि भांग पीस के पी जाए, कि एलएसडी की टिकिया गटक लें, कि किसी रासायनिक द्रव्य का इंजेक्शन लगा लें। कोई ऐसी सस्ती तरकीब मिल जाए कि यात्रा बिना किए पूरी हो जाए। ये कोई नई खोज नहीं, ये सदियों पुरानी खोज है। और आदमी ने इस तरह के बहुत से रासायनिक द्रव्य खोज निकाले जिनके माध्यम से झूठे ध्यान का धोखा पैदा हो जाता है, जो ध्यान जैसे ही मालूम पड़ते। तुमने अगर भंग पी ली तो तुम आकाश में उड़ते मालूम होने लगते हो, जमीन पर ही मगर आकाश में उड़ते मालूम होने लगते हो। ध्यान में भी वैसी उड़ान होती, बड़ी ऊंची उड़ान होती। तुमने अगर एलएसडी लिया तो सारा जगत तुम्हें ऐसा रंगीन मालूम होने लगता है जैसा कभी नहीं था। हरे वृक्ष खूब हरे मालूम होते, गुलाब के फूल खूब गुलाबी मालूम होते, पक्षियों की आवाजें अति मधुर हो जाती, छोटे छोटे रास्ते के किनारे पड़े हुए कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरातों जैसे चमकने लगते, सारा अस्तित्व एक अपूर्व सौंदर्य से भर जाता है। ऐसी ही घटना ध्यान में भी घटती, मगर जो ध्यान में घटती है घटना वह तो थिर हो जाती, और जो एलएसडी से घटती है वह घड़ी भर को है और फिर गई, और जब जाती है तो बहुत अंधेरे में छोड़ जाती, आंखें बिल्कुल फीकी हो जाती। एलएसडी के प्रभाव में तो हर चीज रोशन मालूम होती, पत्ते पत्ते में रोशनी झरती मालूम पड़ती, सोमरस से लेकर एलएसडी तक आदमी ने जितने रासायनिक द्रव्य खोजे हैं, गांजा है, भांग है, मारिजुआना है और न मालूम क्या क्या अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें खोज ली, इन सब के पीछे तलाश है इस बात की कि कोई शॉर्टकट, कोई सीधा सा रास्ता, बिना श्रम किए, बिना साधना किए परमात्मा के अनुभव का मिल जाए, जगत के सत्य को और सौंदर्य को हम देख लें, जान लें। रास्ते मिल भी गए मगर वे सब रास्ते झूठे और उनमें गमाया गया समय सिर्फ गमाया गया समय। तुम कल्पना जाल में खो जाते हो और छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े विचारशील लोग तक धोखे में आ जाते। पश्चिम का बहुत बड़ा विचारक आल्दुस हक्सले जब पहली दफा एलएसडी लिया तो एलएसडी के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा कि अब मैं जानता हूं कि यही बुद्ध को हुआ, यही कबीर को हुआ। आल्दुस हक्सले जैसा विचारशील आदमी इस सदी के दो चार इन्हें गिने विचारशील लोगों में एक, मगर उसको भी भ्रांति हो गई कि यही कबीर को हुआ था, क्योंकि कबीर ने भी खूब बात कही ना, अमीरस बरसे, खूब घनघोर आनंद के मेघ घिरे और आनंद की वर्षा हो रही और भीतर दियों पर दिए जले जैसे हजार हजार सूरज एक साथ उगे हो, ऐसा ही आल्दुस हक्सले को हुआ एलएसडी के प्रभाव में। खूब अमृत की वर्षा होने लगी, दिए पर दिए जलने लगे। स्वभावतः लौट के उसने प्रभाव से कहा कि अब मैं जानता हूं कि यही कबीर को हुआ था। और उसने ये भी लिखा कि अब जैसे पुराने दिनों में आदमी बैलगाड़ी से चलता था और 100 मील चलने के लिए कितना समय लग जाता था, और अब तो 100 मील ऐसे पहुंच जाते हो क्षण में हवाई जहाज से। जैसे बैलगाड़ी और हवाई जहाज का फर्क है, ऐसा ही आल्दुस हक्सले ने लिखा कि बुद्ध ने जो ध्यान की प्रक्रिया की वो बैलगाड़ी जैसी थी, 6 साल लगे। महावीर की तो और भी पुरानी रही होगी बैलगाड़ी, 12 साल लगे। अब एलएसडी हमें मिल गया है, अब ये जेट युग की चीज है, अब इसका तो जरा सी मात्रा आंख से भी दिखाई नहीं पड़े, ऐसी जरा सी मात्रा ले लेने से समाधि लग जाती, तब हमने खोज लिया राज। और उसने लिखा कि जल्दी ही हम उस परम औषधि को खोज लेंगे जिसकी तलाश सदा से चलती रही। ऋग्वेद के स्मरण में उसने उस परम औषधि को सोमा का नाम दिया। इस सदी के पूरे होते होते उसकी आशा थी कि सोमा की खोज हो जाएगी, वैज्ञानिक इंजेक्शन निकाल लेंगे जिसको जब चाहिए समाधि तब समाधि ले ले, पर ऐसी समाधि दो कौड़ी की है। आल्दुस हक्सले कितना ही बड़ा विचारक रहा हो, समाधि और ध्यान के जगत का उसे कोई अनुभव नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। शब्दों का तालमेल बैठ गया और उसने सोचा कि हो गई बात। शब्दों का तालमेल तो स्वप्न और यथार्थ में भी कभी कभी बैठ जाता है। कभी तो तुम स्वप्न में भी ऐसे सौंदर्य का अनुभव कर लेते हो कि जाग के सारा जगत फीका लगे, तो भी तुम ये तो नहीं कहते कि वह सत्य था, तुम जानते हो कि सपना आखिर सपना था।